आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th के साइंस का 13th चैप्टर है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लूप किस तरीके से होगा, इनसाइड द लूप किस तरीके से होगा, ये हमने देखा था। हमने एक्टिविटी 13.6 किया था जिसके थ्रू हमें पता लगा था कार्डबोर्ड के ऊपर जो आयरन पाउडर रखा था उसकी ओरिएंटेशन से हमें पता लगा था कि सर्कुलर लूप अगर रखा हो और उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो तो उससे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं। और यहाँ पर हमने देखा था कि अगर हम मल्टीपल लूप्स लेते हैं या फिर वायर के मल्टीपल राउंड्स बना देते हैं तो उससे करंट बढ़ जाता है, यानी कि हमें एक कंबाइंड इफेक्ट मिलता है। हर एक वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो हमें एक कंबाइंड इफेक्ट मिलता है। तो हम इस तरीके से देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे अगर आप मल्टीपल लूप्स लें या फिर वायर्स के मल्टीपल टर्न्स बना दें तो उससे क्या होगा कि इस तरीके से हो जाएगा कि करंट बढ़ गया है। तो आपको पता है कि करंट अगर बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही चीज हमें देखने को मिलती है कि अगर हम लोग वायर के मल्टीपल टर्न्स बना दें तो उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने सोलेनॉइड के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनती है ये देखा था। हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो वो बिल्कुल वैसी ही होती है मैग्नेटिक फील्ड जैसे अगर कोई बार मैग्नेट रखा हो तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें दिखती थी बिल्कुल ठीक वैसे ही सोलेनॉइड के अराउंड भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखती हैं अगर उस सोलेनॉइड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो तो। और सोलेनॉइड जो है वो एक मैग्नेट की तरह वर्क कर सकता है, एक बार मैग्नेट की तरह वर्क कर सकता है ओनली इफ उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो। तो अगर हमारे सोलेनॉइड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो तो ऐसे में वो एक बार मैग्नेट की तरह फंक्शन कर सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको सोलेनॉइड दिखने में कैसा होता है ये दिखाया गया है ऑन पेज नंबर 229 फिगर 13.10। तो यहाँ पर आपको सोलेनॉइड दिखने में कैसा होता है ये दिखाया है और उसके अराउंड फील्ड लाइंस कैसे होती है वो भी दिखाया है। उसके बाद हमने बात की थी कि सोलेनॉइड का यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें सॉफ्ट आयरन यूज करना होगा। सॉफ्ट आयरन को हमको सोलेनॉइड के अंदर डालना है। सोलेनॉइड के अंदर डालेंगे, करंट फ्लो कराएंगे सोलेनॉइड से, तो उससे क्या होगा कि हमारा सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेट की तरीके से वर्क करने लगेगा। और ऐसे मैग्नेट को जो हमने सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा करके बनाया है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। तो उसके बाद हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि काफी डिफिकल्ट मुझे लगा था आपके लिए, क्योंकि इसमें मुझे आपको डायरेक्शन समझाने में थोड़ी तकलीफ आ रही थी कि मैं आपको बोल के कैसे समझाऊं। आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको समझना भी है कि डायरेक्शन आपको कैसे बतानी होती है अगर आपसे पूछा जाए। क्वेश्चंस में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको मैंने स्टेप वाइज प्रोसीजर बताया था कि अज्यूम करिए कि आपकी जो वायर रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि वायर कौन से प्लेन में रखी है। तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है वायर, ऐसा बोला गया था कि आपने उस वायर को जो सर्कुलर लूप बना रही है उस वायर को आपने अपने टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, आपको अपने हाथ को उसी प्लेन में रखिए जिस प्लेन में आपका वायर रखा है। तो ऐसे में कैसे रखेंगे, आपकी हथेली ऐसे रखिए आपकी, आपका हथेली टेबल के ऊपर हो, आपकी हथेली टच कर रही हो टेबल को। तो ऐसे में क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपकी हथेली, आपकी जो वायर रखी है उसी प्लेन में आपकी हथेली भी रखी है। अब क्या करिए कि आपकी वायर जिस प्लेन में रखी है, आपने हथेली उसी प्लेन में रख दी, अब अपनी हथेली को कुछ इस तरीके से उठाइए कि वो परपेंडिकुलर हो जाए, वायर जिस प्लेन में रखी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो या तो आपकी हथेली आपके चेहरे की तरफ होगी या फिर आपके चेहरे के तरफ नहीं होगी। तो क्या होगा कि आपकी हथेली या तो आपको दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, या तो हथेली दिख रही होगी या हथेली का पीछे वाला हिस्सा दिख रहा होगा। और हाथ कौन सा यूज करना है, हाथ हमेशा राइट हैंड ही यूज करना है। तो अब क्या करेंगे कि आपकी हथेली आपकी तरफ सिर्फ तभी होगी अगर करंट आपकी वायर के अंदर जो फ्लो कर रहा हो वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो। और अगर आपकी हथेली आपको नहीं दिख रही है, हथेली का पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, तो ऐसे में ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिर्फ तब आएगी अगर जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। और अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो थंब पॉइंट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और अगर करंट फ्लो कर रहा हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपका जो थंब पॉइंट करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। थंब के पॉइंट करने का डायरेक्शन आपको क्या बता रहा है इस सिचुएशन में, आपको ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जिस भी डायरेक्शन में आपकी थंब पॉइंट कर रही होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। अब आपको सिचुएशन कोई भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो कॉइल रखा है या फिर जो वायर रखा है, सर्कुलर लूप रखा है, वो हॉरिजॉन्टली ही रखा है, हो सकता है वो वर्टिकली रखा हो। तो अगर वो वर्टिकली रखा है तो आपको जो सिचुएशंस है, जो स्टेप्स बताए हैं, उसे स्टेप वाइज फॉलो करना है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली है। अब हम आज की क्लास में इसी चैप्टर का नया टॉपिक शुरू करेंगे, विच इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ऐसा कंडक्टर रखा है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स लगता है, ये हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ने के पहले आपको कुछ बैकग्राउंड बताएंगे, जो कि आपको ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर। एम्पियर का कहना ये था, साइंटिस्ट इन्होंने एम्पियर ने ये कहा था कि जिस तरीके से हमने ये देखा है कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो तो वो एक मैग्नेट की तरीके से प्रॉपर्टीज शो करता है, और ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आप अगर कोई मैग्नेट रखें तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर। सिमिलरली अगर हम ऐसा करें कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करा रहे हैं और इस बार हम रिवर्स सिचुएशन लाना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि मैग्नेट उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या फोर्स एग्जर्ट करता है। तो इसके ऊपर जो स्टडी की गई थी एम्पियर के द्वारा की गई थी, तो वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि फोर्स जो एग्जर्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो अगर क्रिएट किया गया है वो तो क्रिएट हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट कर दी गई है। तो दूसरा मैग्नेट हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगाता है, ये हम लोग को देखना है। तो ये देखने के लिए कि एक मैग्नेट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किस तरीके से फोर्स एग्जर्ट करेगा, हमें एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 13.7। दिस एक्टिविटी इज ऑन पेज नंबर 230। इसको करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको एल्युमिनियम का एक रॉड चाहिए, छोटा पीस चाहिए एल्युमिनियम का जो स्ट्रेट होना चाहिए, और इसकी लेंथ आप लोग अबाउट 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और आपको वायर्स चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए जिनकी मदद से आपको इस एल्युमिनियम के रॉड को टाई करना है, बेसिकली कनेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने वायर लिया है और वायर को कनेक्ट किया है आपकी एल्युमिनियम रॉड से, एल्युमिनियम रॉड की दो एंड्स हैं तो आपने दोनों एंड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया। अब उस वायर को आपको कुछ इस तरीके से लगाना है कि आपकी जो एल्युमिनियम की रॉड है उसे आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें। हॉरिजॉन्टली भी कैसे, कुछ इस तरीके से आपका एल्युमिनियम रॉड होना चाहिए कि वो एक एक हिस्सा, उसका एक एंड तो आपको दिखेगा, दूसरा एंड उसके बिल्कुल पीछे होगा, एल्युमिनियम रॉड का बिल्कुल पीछे होगा, इसलिए आपको वो नहीं दिखेगा। तो वो मतलब आपकी आपको एक एंड दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है। तो यहाँ पर आप उसका फ्रंट हिस्सा आपको दिखेगा, बैक हिस्सा नहीं दिखेगा क्योंकि वो बैक हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से के बिल्कुल ठीक पीछे होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका एल्युमिनियम रॉड प्लेस करना है। तो यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टली एल्युमिनियम रॉड को लगा दिया है वायर्स की मदद से, और इस वायर को लगाने के लिए आपको एक आप स्टैंड यूज कर सकते हैं। ये स्टैंड आप देख सकते हैं पेज नंबर 230 पर आपको दिखाया गया है। तो आप एक स्टैंड ले सकते हैं जिस पर आपने ये वायर लपेटी है। अब क्या करेंगे कि इस वायर को जो आपने यूज किया है आपके एल्युमिनियम रॉड को हॉरिजॉन्टली लटकाने के लिए बेसिकली, तो इस वायर से आपने एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी है और साथ में एक प्लग की भी आपने लगा दी है। इतना आपने करने के बाद में क्या किया है कि आपने एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया है बेसिकली, और वो रेजिस्टेंस आपने कैसे किया है, वायर को मल्टीपल टाइम्स आपने, आप हैंडल देख सकते हैं, जिस हैंडल के ऊपर आपने ये वायर लटकाई है उस पर उसको आपने मल्टीपल टाइम्स उस वायर को लपेट दिया है, तो एक रेजिस्टेंस की तरीके से भी वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपको सर्किट बनाना है जैसे फिगर 13.12 पेज नंबर 230 पर दिया है। आपको जो रॉड ए भी है एल्युमिनियम की, उससे वायर्स को कनेक्ट करना है, वायर को लटका देना है स्टैंड पर, और उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो रॉड ए बी होगा वो हॉरिजॉन्टली लटक जाएगा, जिसका फ्रंट हिस्सा आपको दिख रहा होगा, बैक हिस्सा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट हिस्सा आपके चेहरे के सामने होगा, बैक हिस्सा जो होगा वो फ्रंट वाले के बिल्कुल पीछे होगा तो आपको नहीं दिखेगा। तो हॉरिजॉन्टली आपने प्लेस कर दिया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको एक मैग्नेट भी चाहिए। मैग्नेट आपने किस तरीके का यूज किया है? मैग्नेट आपने हॉर्स शू जो मैग्नेट होता है सी शेप का होता है या फिर यू शेप, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो इस शेप का जो ये मैग्नेट है ये आपने यूज किया है। इसका भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। आपको नॉर्थ पोल जो है वो नीचे रखना है, आपकी रॉड ए बी के नीचे नॉर्थ पोल रखना है मैग्नेट का और साउथ पोल ऊपर रखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो बैटरी लगाई है और आपने वायर्स जो लगाए हैं और प्लग की लगाया, अब क्या करिए कि आप आपकी रॉड को एक नाम दे दीजिए। जो जो हिस्सा जो आपकी रॉड का एंड आपकी चेहरे की तरफ होगा, जो आपको दिख रहा होगा उसे नाम दे दीजिए ए, और जो आपको नहीं दिख रहा होगा उसे नाम दे दीजिए बी। और आप कुछ इस तरीके से वायर्स का कनेक्शन करें कि करंट जो फ्लो करे वो फ्लो करे फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। तो करंट जो फ्लो करना चाहिए वो एंड बी से एंड ए की तरफ से एंड ए की ओर फ्लो करना चाहिए। तो आप बैटरी का कुछ इस तरीके से कनेक्शन लगाएं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो हो वो आपकी एल्यूमिनियम रॉड के बी एंड से जुड़ा हो, ताकि करंट जो हो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम रॉड का एंड बी टू एल्यूमिनियम रॉड का एंड ए। तो इस तरीके से करंट का फ्लो होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको सारी सिचुएशंस एक एक करके समझनी है। करंट का फ्लो हो रहा है इन एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए, यानी कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। करंट आप देखें तो करंट आपकी ओर आ रहा है, ऐसे समझ लो कि कोई तीर उड़ करके आपकी आंखों की ओर आ रहा है, इस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है आपकी ओर। तो एंड बी से एंड ए की ओर आपकी ओर करंट फ्लो कर रहा है। और आपने जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखी है वो कैसी रखी है? साउथ पोल ऊपर रख दिया है, नॉर्थ पोल नीचे रख दिया है। तो आपने मैग्नेट की कुछ इस तरीके से पोजीशनिंग की है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है कि इट इज वर्टिकली अपवर्ड्स। तो आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ करंट फ्लो कर रही है। और उससे उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट इज वर्टिकली अपवर्ड्स। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एल्युमिनियम की रॉड है इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस एग्जर्ट होगा बाय द मैग्नेट, एक फोर्स एग्जर्ट होगा। और इस फोर्स की वजह से आप देखेंगे कि आपकी एल्यूमिनियम की जो रॉड है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है ये डिफ्लेक्शन इसीलिए है क्योंकि फोर्स एग्जर्ट हो रहा है हमारे एल्यूमिनियम रॉड पर। और फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इसका मतलब ये है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि एक मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर हो और वहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एग्जर्ट करती है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने पर इस बार डिफ्लेक्शन जो है वो आपको लेफ्ट में ना दिख करके राइट में दिख सकती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि करंट जो करंट की डायरेक्शन है रॉड ए बी में, पहले तो फ्रॉम बी टू ए थी, अब मान लो अगर आपने करंट की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी कर दी है, या आप टर्मिनल्स चेंज करके कर सकते हैं, बैटरी का टर्मिनल रिवर्स करके कर सकते हैं। तो करंट में अगर आप करंट की डायरेक्शन में बदलाव लाते हैं तो आप ये देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन में बदलाव लाने से जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है आपकी रॉड ए बी पर उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से इस बार आपका रॉड जो है वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो सकता है। अब एक और सिचुएशन है, अब क्या करिए कि आपके जो हॉर्स शू मैग्नेट है इसको उल्टा कर दीजिए। इस बार ऐसा कर दीजिए कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर हो जाए, साउथ पोल नीचे हो जाए, तो इससे भी रिवर्सल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रिवर्सल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इस बार भी आपको दिखेगा कि आपकी जो रॉड ए बी है उसमें डिफ्लेक्शन अलग तरीके का दिखेगा। तो आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है फोर्स का डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब एक्सपेरिमेंट्स जो साइंटिस्ट ने किए हैं उन एक्सपेरिमेंट से उनको ये कंक्लूजन मिला है कि अगर आप चाहते हैं कि फोर्स जो एग्जर्ट किया जा रहा है वो हाईएस्ट हो, तो वो फोर्स हाईएस्ट कब होगा, तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उस केस में अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि फोर्स अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना होगा। तो उससे जो फोर्स एग्जर्ट होगा ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर वो मैक्सिमम होगा, तो आपको डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम दिखेगी। और इसी बात को ध्यान में रख के एक सिंपल रूल बनाया गया है विच इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस बात को कंसिडर करता है कि आपने करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर लिया हुआ है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया हुआ है, तो ऐसे में आपको फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाती है यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। फोर्स का अगर पता लगाना है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर तो आप लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको ये कहता है कि आप अपने हाथ को खोलें और हाथ की अंगूठा जो है उसको खोलें, फोर फिंगर यानी अंगूठे के जस्ट बगल वाली जो उंगली होती है उसको खोलें और अंगूठे की बगल वाली उंगली के जस्ट बगल वाली उंगली मिडिल फिंगर जो है इसको खोलें और उनको कुछ इस तरीके से खोलें कि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर देखो मिडिल फिंगर को स्ट्रेच आउट करो, फोर फिंगर को स्ट्रेच आउट करो, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अंगूठा जो होता है वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाता है फोर फिंगर के, क्योंकि आप देख सकते हैं आप अगर आप अपने चेहरे के सामने एल बनाइए अपनी अंगूठे से और फोर फिंगर से एल बनाइए तो एल बनेगा। एल बने का मीनिंग क्या है कि फोर फिंगर और अंगूठा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब अपनी मिडिल फिंगर को भी स्ट्रेच आउट कर दो कुछ इस तरीके से कि वो फोर फिंगर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपकी तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। कौन कौन सी उंगलियां, अंगूठा, फोर फिंगर और मिडल फिंगर। और यही रूल भी है फ्लेमिंग्स का, लेफ्ट हैंड रूल भी यही है कि आपकी जो अंगूठा है ये अंगूठा आपको क्या बताता है, ये अंगूठा आपको बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, और आपकी जो मिडल फिंगर है वो आपको क्या बताती है, वो आपको बताती है कि करंट की डायरेक्शन किधर है, और आपकी जो फोर फिंगर है वो आपको बताती है कि फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो तीन उंगलियां हैं और लेफ्ट हैंड की तीनों दो उंगलियां हैं, बेसिकली एक अंगूठा है। तो आपकी जो ये तीन आप फिंगर्स यूज कर रहे हैं, और यानी दो फिंगर्स यूज कर रहे हैं, एक थंब यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो मिडल फिंगर है आपकी मिडल फिंगर पॉइंट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपकी फोर फिंगर पॉइंट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे आप लोगों को अंगूठा जिधर पॉइंट कर रहा होगा उससे आपको पता चलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है। ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये आप लोगों को पेज नंबर 231 फिगर 13.13 में डायग्रामेटिकली भी बताया गया, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम करंट कैरिंग कंडक्टर यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स भी यूज करते हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स का और मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करते हुए हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स है, लाउडस्पीकर्स है, माइक्रोफोन्स है, और बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस भी हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कुछ डिवाइसेस जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। और इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 13.2 ऑन पेज नंबर 231, इसमें बोला है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर 13.14, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि आपकी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मोशन की डायरेक्शन आपको बताई गई है, और आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको बताई गई है, आपको ये बताना है कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्योंकि करंट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और करंट की मूवमेंट की उल्टी डायरेक्शन में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की उल्टी डायरेक्शन में करंट की फ्लो होती है। करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए आपको ये देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है तो करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स हमारा करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन में दिखाई गई है, तो ऐसे में जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आएगी इनटू द पेज। आप अपनी उंगलियां यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो कहाँ पॉइंट कर रही होगी, मिडिल फिंगर पॉइंट कर रही होगी वर्टिकली अपवर्ड्स, विच मीन्स करंट की डायरेक्शन आपको पता है वर्टिकली अपवर्ड्स, और आपकी जो फोर फिंगर है ये पॉइंट कर रही होगी इन दी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक्स डायरेक्शन में। और इससे क्या होगा कि अंगूठा जो होगा आपका वो पॉइंट कर रहा होगा इनटू द पेज, इसका मतलब है कि इनटू द पेज फोर्स इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस इंटरनेट से ढूंढ के या फिर अपने टीचर्स से मांग के आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको फिंगर्स याद हो जाएं कि कौन सा फिंगर्स किस चीज़ के लिए होता है यूज। उसके बाद यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 231 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है मास, सेकंड ऑप्शन है स्पीड, थर्ड ऑप्शन है वेलोसिटी और फोर्थ ऑप्शन है मोमेंटम। देखो, मास तो चेंज होगा नहीं, अगर प्रोटॉन जो है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा होगा तो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा, तो फोर्स एग्जर्ट होगा तो फोर्स एग्जर्ट होने से मास का चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं बना तो बनता, तो मास तो चेंज होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन है स्पीड, स्पीड यहाँ पर इसलिए नहीं चेंज होगी क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है हमारे प्रोटोन के ऊपर वो उसकी मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्रोटोन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो उससे उसके मैग्नीट्यूड में, स्पीड में तो कोई चेंज आएगा नहीं लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी चेंज करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करें, आप वेलोसिटी चेंज करने के लिए मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटॉन के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बिकॉज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड, लेकिन स्पीड नहीं चेंज होगी। स्पीड ना चेंज होने का कारण भी मैंने आपको बता दिया, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है प्रोटॉन का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसी वजह से स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। और डी ऑप्शन है मोमेंटम, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग तो मोमेंटम इज आल्सो चेंजिंग। तो दो ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओ, देखो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है, इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी इफेक्टेड इफ करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड। सेकेंड पार्ट, स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज, एंड थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। तो एक्टिविटी 13.7 में आपको तीन सिचुएशंस बोले हैं, तीन अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से रॉड ए बी की डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं फोर्स का, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जा रहा है कि जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स एग्जर्ट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो फोर्स इट डिपेंड्स ऑन द करंट जो फ्लो कर रहा है इन द रॉड। उस रॉड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड पर फोर्स डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा ऑन दैट कंडक्टर। दूसरा, अगर आपने ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है तो उस पर भी, उस केस में भी जो फोर्स अप्लाई होगा ऑन द कंडक्टर वो ज्यादा होगा। तो अगर आप स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं, इसका मतलब है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग रखी है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे तो ऐसे में आपकी जो रॉड है, ए बी रॉड या फिर कुछ भी कंडक्टर आप ले सकते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी बहुत स्ट्रांगर हो जाएगा। अगर आपने लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीज कर दिया है तो ऐसे में भी फोर्स इंक्रीज हो जाती है, फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल गया, आपको फॉर्मूला नहीं बताया जा रहा है, फॉर्मूला आप लोगों को क्लास 12th में पता चलेगा, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि फोर्स जो एग्जर्ट होता है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इफ इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन द करंट जो पास कर रहा है इन द कंडक्टर, ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। यहाँ पर भी आप लोगों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट का डायरेक्शन बताया है टुवर्ड्स वेस्ट, तो ऐसे में आप देखो जिस डायरेक्शन में आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करती है वही डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, और आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और आप लोगों को जो फोर्स का डायरेक्शन है वो बताया हुआ है। तो आपको आपकी फिंगर्स यूज करो और थंब यूज करो, आपकी मिडिल फिंगर जो है वो कहाँ पॉइंट करेगी, इट विल बी पॉइंटिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये हमारी करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। और आपकी जो डिफ्लेक्शन है ये कहा जा रहा है कि ये नॉर्थ में हो रही है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन थंब से जो आपको बता रहे हैं, थंब जो है इट विल बी पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पॉइंट कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट कर रही होगी ये अपवर्ड पॉइंट कर रही होगी। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद एक टॉपिक है मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, जो मेडिसिन है, मेडिसिन यानी कि ब्रांच जिसमें डॉक्टर्स वगैरह पढ़ाई जो करते हैं MBBS वगैरह, तो इसमें जो मेडिसिन की ब्रांच है इसमें मैग्नेटिज्म का क्या यूज है। आपकी बॉडी जो होती है, आपकी बॉडी के अंदर भी करंट फ्लो करता है, आपको पता है करंट कैसे फ्लो करता है, नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वो बेसिकली करंट ही फ्लो करती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे करंट फ्लो करता है तो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है करंट फ्लो की वजह से। और सबसे ज्यादा जो अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, ब्रेन में देखने को मिलता है और हार्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो दो ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इन दी ह्यूमन बॉडी, एंड दोज ऑर्गन्स आर हार्ट एंड ब्रेन। तो इस तरीके से इसका यूज करते हुए, मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करते हुए स्टडी की जाती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और यहाँ पर जो स्टडी की जाती है वहां पर एक टेक्निक यूज किया जाता है जिसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, जो फील्ड है उसकी स्टडी करके पता लगाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि कोई बॉडी पार्ट में कोई डिसफंक्शनिंग तो नहीं है। आप लोगों ने ज्यादा कॉमनली जो सुना होगा वो MRI सुना होगा, तो यही ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है जिसमें बॉडी की मैग्नेटिक जो फील्ड्स है उसको स्टडी करके पता लगाते हैं कि डायग्नोसिस करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और किस पार्ट में प्रॉब्लम है अगर है तो। उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना है अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है और मैग्नेटिक इफेक्ट है दोनों से कंबाइंड इफेक्ट जो पड़ रहा है इस डिवाइस पर ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन कराते हैं इंटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो आपके घरों में जो फैंस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, मिक्सर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है, फंक्शन करता है। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर में किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं ये देखो। इलेक्ट्रिक मोटर में आप देख पा रहे हैं ऑन पेज नंबर 232 कि इसके अंदर एक क्लोज्ड लूप बनाया गया है, रेक्टेंगुलर लूप बनाया गया है ABCD। ये लूप बनाया गया है यूजिंग अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ABCD को यूज करके एक लूप बनाया गया है, रेक्टेंगुलर लूप, एंड दिस लूप इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच इस रेक्टेंगुलर लूप को रख दिया गया है और कुछ इस तरीके से रखा गया है कि हमारा जो कॉइल है इट इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन में ही लूप का प्लेन है, एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिस प्लेन के डायरेक्शन में ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हमने हमारे रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जिससे आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए ऑन पेज नंबर 232 इलेक्ट्रिक मोटर में, जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें देखो, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म्स AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब देखो, ये तो आर्म्स तो ABCD है, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो करंट के जो फ्लो का डायरेक्शन होगा, दैट फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो यही कहना चाहते हैं आपको ये कहकर कि आर्म्स AB और CD, ये जो वायर्स हैं, ये परपेंडिकुलर हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं। बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि करंट का जो फ्लो हो रहा है ना आर्म्स AB और CD के अंदर, वो करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर वायर है तो इस वायर के दो एंड्स हैं। अब इन दो एंड्स को हमने क्या किया है, हमने स्प्लिट रिंग्स क्या है बेसिकली,
रिंग है, एक कंप्लीट, मान लो एक कंप्लीट रिंग था लेकिन उसको बीच से काट दिया गया, तो ये आधी आधी रिंग है, इसको आधी आधी रिंग को चिपकाना नहीं है, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है ये रिंग्स, और इनको एक एक्सल, आप एक देखो एक पाइप के जैसा एक कुछ आप लोगों को गोल मटेरियल दिख रहा है, इसे एक्सल कहते हैं, तो इस एक्सल के अराउंड स्प्लिट रिंग्स लगाई हैं, ऐसी रिंग्स लगाई हैं जो आपस में चिपकी नहीं है, आधी आधी सी शेप्ड रिंग्स लगाई हैं, दो रिंग्स लगाई हैं, और इन दो रिंग्स से, इन दो रिंग के एंड से हमारी जो रेक्टेंगुलर वायर है वो जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर अरेंजमेंट को ध्यान से समझो, हमारी जो रेक्टेंगुलर वायर है इसकी दो एंड्स हैं, ये दो एंड्स जुड़ी हैं स्प्लिट रिंग के अरेंजमेंट से। स्प्लिट रिंग क्या है? एक ऐसी रिंग है बेसिकली जो दो रिंग्स हैं आधी आधी कटी हुई है सी शेप्ड की, एक रिंग का नाम रखा है पी, दूसरे रिंग का नाम रखा है क्यू, तो हमारी ए बी वाली जो वायर है वो पी वाली रिंग से, आधी रिंग से जुड़ी है, और सी डी वाली जो वायर है वो क्यू वाली आधी रिंग से जुड़ी है, और ये जो आधी आधी रिंग्स हैं दे कैन रोटेट, ये मूव कर सकती हैं अराउंड द एक्सल, जो एक्सल है इसके अराउंड पी क्यू, ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं आधी रिंग पी आधी रिंग क्यू, ये मूव कर सकती हैं अराउंड द एक्सल, गोल गोल घूम सकती हैं ये, लेकिन हमेशा जुड़ी रहेंगी विद दी वायर, जो ए बी वाला वायर है, ए बी साइड जो है वायर का, उसकी जो एंड है वो हमेशा पी वाले स्प्लिट रिंग से जुड़ी रहेगी, और जो सी डी वाली वायर की एंड है वो हमेशा क्यू वाली स्प्लिट रिंग से जुड़ी रहेगी, लेकिन ये स्प्लिट रिंग्स जो है दे कैन रोटेट अराउंड द एक्सल। अब ये सारा आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, जो पी वाली आधी रिंग है उसके पास में आप एक एक्स बी पॉइंट देख पा रहे होंगे। ये एक्स पॉइंट बेसिकली क्या है कि हमारी जो वायर है ए बी सी डी, इससे हमने एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया है, उसके बाद इसको जोड़ दिया है स्प्लिट रिंग से, स्प्लिट रिंग का जो एंड है उसको हमने जोड़ा है, एक्स एंड को जोड़ा है, एक्स एंड बेसिकली ये एक ब्रश है, कंडक्टिंग ब्रशेज हैं, स्टेशनरी ब्रशेज हैं, और ये स्टेशनरी ब्रशेज जुड़ी हुई हैं एक सर्किट से, बैटरी से जुड़ी हुई हैं, और उसके बाद ये प्लग की से जुड़ी हुई हैं। अब ब्रशेज का मीनिंग क्या होता है? ब्रशेज का मीनिंग ये नहीं है कि आपके घर में जो आप दांत साफ करने के लिए ब्रश यूज करते हैं वैसा ब्रश है, ऐसा ब्रश नहीं है, ये बेसिकली एक पॉइंट है, कंडक्टर से यूज करके एक पॉइंट बनाया गया है, कंडक्टर को यूज करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है कि पॉइंट जो एक्स दिख रहा है आपको, वहां पर आपकी स्प्लिट रिंग जो है, स्प्लिट रिंग आधी रिंग पी जो है, इट जस्ट टचेस द एक्स पॉइंट। आपकी एक्स पॉइंट जो है वो बेसिकली है क्या? वो आपकी बैटरी का एक एंड है, एक टर्मिनल है जो आपने वायर से जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपने एक कंडक्टर जिसे स्टेशनरी रख के रखा हुआ है, और दूसरा एंड जो है वो दूसरे टर्मिनल से, दूसरे वायर से जोड़ा गया है, जिसे आप वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो एक्स पॉइंट आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये बेसिकली है क्या? ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ एक कंडक्टर है जो इस तरीके से वर्क कर रहा है कि यहां से ही जैसे ही हमारा स्प्लिट रिंग पी टच होगा तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन ए बी सी डी, जो आपकी रेक्टेंगुलर लूप बनाई है आपने कॉपर की, उसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा। कब फ्लो करेगा? तब फ्लो करेगा जब स्प्लिट रिंग, जिससे कि रेक्टेंगुलर वायर जुड़ी हुई है, ये स्प्लिट रिंग जैसे ही पॉइंट एक्स को टच करेगा तो हमारे रेक्टेंगुलर वायर के अंदर से करंट फ्लो करने लगेगा। तो इसीलिए इसे ब्रश कह रहे हैं। हमारी आप इलेक्ट्रिसिटी और पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ब्रश बेसिकली एक पॉइंट है जहां से बिजली सप्लाई की जाती है एक दूसरे सेटअप के अंदर। यहाँ पर हमने बेसिकली दो सेटअप्स बनाए हुए हैं, एक सेटअप हमने तो रेक्टेंगुलर वायर का बनाया हुआ है, कॉपर इंसुलेटेड वायर का, और दूसरा सेटअप हमने सर्किट का बनाया हुआ है जो करंट सप्लाई कर रहा है, और इन दो सेटअप्स को जोड़ता हुआ जो पॉइंट है वो है पॉइंट एक्स, और वहां पर कंडक्टर यूज करते हैं बिजली को एक सेटअप से दूसरे सेटअप में पहुंचाने के लिए। तो जो करंट को पहुंचाने का काम कर रहा है वो एक कंडक्टर ही है, और इसे एक स्पेशल नाम देते हैं ब्रशेस। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग 12th में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ब्रशेस ने क्या किया है, ब्रशेस से जैसे ही स्प्लिट रिंग पी टच हुआ है तो वहां से क्या हुआ, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया है इनसाइड द रेक्टेंगुलर लूप। और ये करंट कैसे फ्लो कर, आप देख सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एक्स पॉइंट एंड दैट एक्स पॉइंट इज कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग पी, तो पी से एंटर कर रही है करंट, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन ए बी फ्रॉम ए टू बी होगा, और इस तरीके से जैसे ये करंट फ्लो करने लगेगा तो फ्रॉम ए टू बी इन आर्म ए बी द करंट विल फ्लो फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, और सी डी में किस तरीके से फ्लो होगा, सी डी में फ्लो होगा फ्रॉम सी टू डी। तो इस तरीके से करंट का फ्लो का डायरेक्शन है। तो दो आर्म्स हैं, आर्म ए बी और आर्म सी डी। आर्म ए बी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पर जो सी डी वाली आर्म है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू डी। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप डायरेक्शन देखें तो इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ से साउथ की ओर है। अब यहाँ पर आप अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आर्म ए बी है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे में जो आर्म ए बी है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि फोर्स आर्म ए बी को पुशेस डाउनवर्ड्स। तो आर्म ए बी को तो नीचे की ओर धक्का मिल रहा है, और अगर हम सी डी वाली आर्म को देखें तो यहाँ पर भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने पे हमें पता चल रहा है कि सी डी वाली जो आर्म है इसमें सी डी वाली आर्म को ऊपर की ओर धक्का मिल रहा है, तो ए बी वाली आर्म को तो नीचे की ओर धक्का मिल रहा है और सी डी वाली आर्म को ऊपर की ओर धक्का मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इनमें एक रोटेशन हो रहा है, ये गोल घूमना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आर्म को नीचे की ओर धक्का मिल रहा है दूसरी को ऊपर की ओर धक्का मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ये ए बी सी डी वाली लूप है ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगी, और वो भी किस डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगी, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा कि इस बार हमारी जो सी डी वाली आर्म है जो कि स्प्लिट रिंग क्यू से जुड़ी थी, अब ये तो रोटेट कर सकते हैं, स्प्लिट रिंग्स तो रोटेट कर सकते हैं अराउंड द एक्सल, तो क्यू जो स्प्लिट रिंग क्यू है ये रोटेट करके घूम करके इस बारी पॉइंट एक्स पर आ जाएगी, जो ब्रश एक्स है इससे टच हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इस बारी जैसे ही टच हो जाएगी एक्स वाले एंड से हमारी स्प्लिट रिंग क्यू, तो इस बारी सी डी के अंदर एंटर कर जाएगा करंट। करंट का डायरेक्शन जो है अब पलट जाएगा, पहले इट वॉज फ्रॉम सी टू डी, लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन में जैसे ही स्प्लिट रिंग क्यू ने ब्रश एक्स को टच किया तो करंट विल स्टार्ट एंटरिंग थ्रू आर्म सी डी। तो इस बारी करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रॉम डी टू सी। इससे क्या हो जाएगा कि तुरंत ही करंट की डायरेक्शन पलटने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी, और उससे क्या होगा कि हमारी लूप के ऊपर इस बारी सी डी वाली आर्म जो है इस पर नीचे की ओर धक्का आएगा और ए बी वाली आर्म की ओर ऊपर की ओर धक्का आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पूरी सर्कल में रोटेट करते ही रहेगा हमारा लूप। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि करंट की डायरेक्शन पलट जाती है, कब पलट जाती है, जैसे ही हमारा जो लूप है वो हाफ रोटेशन करके जैसे ही ब्रश एक्स को टच करता है, हमारा स्प्लिट रिंग क्यू जो है जैसे ही वो ब्रश एक्स को टच करता है तो वैसे ही करंट की डायरेक्शन इनसाइड द लूप ये पलट जाती है, जिसकी वजह से हाफ रोटेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फुल रोटेशन, और ये ऐसे ही बार बार रोटेट होता रहता है। तो इससे क्या होगा कि घूमता रहेगा हमारा लूप। अब लूप की जगह आप क्या करो, आप लगा दो एक फैन, तो अब आपको फैन घूमने लगेगा और आपको हवा देगा, या फिर फैन की जगह आप लोग कुछ और भी लगा सकते हैं, मिक्सर का ग्राइंडर जो है, तो ग्राइंडर क्यों रोटेट करता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है उसमें, इसीलिए रोटेट करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन होता है आपके फैन में भी और आपके ग्राइंडर में भी। अब यहाँ पर जो डिवाइस यूज किया जाता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, हमारे जो आपने रेक्टेंगुलर लूप लिया है उसके अंदर करंट की फ्लो की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको एक नाम देते हैं, उसका नाम है कम्यूटेटर। और हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग जो है वो यूज करता है, वो फंक्शन करता है एज अ कम्यूटेटर, क्योंकि इसी की हेल्प से करंट की फ्लो की डायरेक्शन पलट जाती है इन योर रेक्टेंगुलर लूप। और यहाँ पर ये आप लोगों को इफेक्ट देखने को क्या मिलता है कि आपका जो रेक्टेंगुलर लूप है इट कंटिन्यूज मूविंग इन अ रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पर आप लोगों को जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसकी फंक्शनिंग समझ में आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर से आप देख सकते हैं ये क्या क्या यूज करते हैं, अगर कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स हो तो वो क्या क्या यूज करते हैं। यहाँ पर तो आपको सिर्फ फंक्शन समझाने के लिए बताया गया कि किस तरीके से आपने मैग्नेट ही यूज कर लिए, लेकिन अगर कमर्शियल मोटर्स हैं जो आपके घरों में यूज होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। वहां पर आपको पता है कि आप मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, और वहां पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कंडक्टिंग वायर्स से बनाए जाते हैं इन द करंट कैरिंग कॉइल। यहाँ पर जैसे आपने एक जो ये रेक्टेंगुलर लूप लिया है, तो इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग कंडक्टिंग वायर्स इन द करंट कैरिंग कॉइल। उसके बाद साथ में सॉफ्ट आयरन कोर इज ऑल्सो यूज। सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड ही कॉइल को वूंड किया जाता है, गोल गोल उसी के अराउंड वायर को लपेटा जाता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर इज ऑल्सो यूज इन अ कमर्शियल मोटर। तो इस तरीके से हमारा जो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनको यूज करते हैं हम इन कमर्शियल मोटर्स। और ये जो कंबाइंड डिवाइस बन जाता है, कंपोनेंट बन जाता है आयरन कोर, जिसके अराउंड हमने वायर को लपेटा हुआ है, कॉइल को लपेटा हुआ है, इसको टुगेदर दे आर कॉल्ड आर्मेचर। एंड आर्मेचर जो है इट एनहांसेस द पावर ऑफ द मोटर। उसके बाद यहाँ पर इसी जो आपने पढ़ लिया है अब तक उसके ऊपर बेस्ड पेज नंबर 233 पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताना है आपको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज वेरी इजी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको ये कहा जाता है कि यू आर अज्यूमिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। All three are perpendicular to each other. और Fleming's left hand rule में we are using our left hand to find the directions of force. If we know the direction of flow of current and the direction of magnetic field, तो ऐसे में your middle finger will function as the direction, will show the direction of current. Your forefinger will point in the direction of magnetic field and your thumb will point in the direction of force. तो इस तरीके से तीनों आपकी जो दो उंगलियां हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखनी है, थंब को भी परपेंडिकुलर रखना है, परपेंडिकुलर रखना है आपकी उंगलियों के, और आपकी जो मिडिल फिंगर होगी ये पॉइंट करेगी करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर जो होगी ये पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फोर्स की डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा। ये कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि अगर करंट कैरिंग लूप रखा गया है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता है बेसिकली, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो आर्म्स, आपकी रेक्टेंगुलर लूप जो है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर दो आर्म्स है, आर्म ए बी, आर्म सी डी, जिनके ऊपर अनइक्वल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। एक आर्म के ऊपर ऊपर की ओर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, दूसरी आर्म के ऊपर नीचे की ओर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये दे स्टार्ट मूविंग, दे स्टार्ट रोटेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इफ अ करंट इज पास थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप और एनी सर्कुलर लूप और एनी कर्व्ड लूप। तो इस तरीके से दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की अगर आपने कोई कर्व्ड लूप रखा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड और उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया जाता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर रोटेशन हो जाती है इलेक्ट्रिक मोटर में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग इज बेसिकली वर्किंग एज अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर इज अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। और यहाँ पर आपका स्प्लिट रिंग जो है वो कम्यूटेटर की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि यही हेल्प कर रहा है आपके लूप के अंदर फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपने जो पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। कोई दिक्कत कहीं पर भी आ रही हो तो आप अपनी टीचर से जरूर पूछेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।